समयसार परमागम की 49वीं गाथा चल रही थी, जिसमें अरसादी 9 बोलों के माध्यम से आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है ये समझाया था। 8 बोल नेगेटिव थे, नास्ती रूप थे, और 1 चेतना गुणम ये शब्द पॉजिटिव था। इसमें हरेक के बोलों में 9 के 9 में अरस अरूप वगैरह के में परद्रव्य से कर्तृत्व भोक्तृत्व एकत्व और ममत्व तो छुड़ाया ही, लेकिन जब ज्ञातत्व की बात आई तो बात कुछ अलग थी। जिस तरह एकत्व ममत्व कर्तृत्व का निषेध एकदम निर्दयता से किया ना, कि आत्मा में रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, स्पर्श नहीं है, आत्मा का इनका स्वामी नहीं है, आत्मा इनका कर्ता भोक्ता नहीं है। कर्ता भोक्ता की बात मुख्य रूप से आ गया है, कर्ता क्रम अधिकार में एकत्वमत्व की बात आई, कि ज्ञान के संदर्भ में जब बात आई तो अंतिम 2 बोल लगभग सभी में ज्ञान संबंधी थे। मैं विशेष ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ आप सबका, और इन दोनों बोलों की विशेषता ये थी, पहला बोल तो लगभग ऐसा था कि अकेले उसी को थोड़ी जानता है, सबको जानता है ना? तो ऐसा बोल था तो इससे पर के जानने का निषेध की भूख दूर दूर तक भी नहीं आती है, बल्कि सबको जानने की स्थापना बहुत मजबूती से होती है। यद्यपि वो सबको जानना भी व्यवहार है ना, फिर भी अरस अरूप अव्यक्त सभी बोलों में उसकी स्थापना की, ख्याल में ना। और फिर एक जो अंतिम बोल था ये तो करीब 5वां था, जहां 6 बोलते तो 5वां ये था, जहां 4 बोलते तो 3रा ये था, जहां जो अंतिम बोल था जो 6वां या 4था उसमें ये कहा कि उसे जानता तो है, उसके जानने रूप तो परिणमित होता है, लेकिन उस रूप परिणमित नहीं होता। तो यहां भी इसके एकत्वमत्व का ही निषेध हुआ ना, जानने का निषेध नहीं हुआ, जानने रूप तो परिणमित होता है, उसको जानने रूप परिणमित होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें कहीं भी आत्मा का पूरा स्वरूप बता दिया, और वो खुद कहते हैं कि ये स्वरूप को तुम समझ लोगे तो तुम्हें सम्मा दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कुछ अब बाकी रह गया, जब सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार पढ़ोगे तब हम ज्ञान का निषेध करेंगे और तब तुम्हें सम्मा दर्शन की प्राप्ति होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गंध भी नहीं है उस बात की यहां पर, है ना? क्योंकि अपन ये कहते हैं बार बार कि भाई देखो इसमें ज्ञान की भी बात है, ज्ञान की भी बात आ गई। अरे आ गई ना ज्ञान की बात, कौन कहता है? लेकिन नहीं जानने की बात कहां आई? रूप रस गंध स्पर्श को नहीं जानने की बात आई कि सबको जानने की बात आई? और जानने रूप परिणमित होने का निषेध किया उनके कि उन रूप परिणमित होने का निषेध किया? अब ऐसा भेद ज्ञान हम नहीं समझ पाते हैं कहीं भी। यदि उसके जानने का निषेध आपको दिखाई दे तो भी आप उसका यह समर्थ समझना कि उस रूप परिणमित होने का निषेध है, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करने का निषेध है। क्योंकि जानना तो आत्मा का स्वभाव है, और स्वभाव किसी पर की अपेक्षा नहीं रखता है। बार बार इस समय सार में यह समझाया है कि ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता है। खेमचंद भाई इस वाक्य को बहुत बोला करते थे, अब खेमचंद भाई के श्रोता यहां कितने हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बहुत बोलते थे ज्ञेय के अनुसार ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के अनुसार ज्ञेय जाना जाता। अपने क्रमत पराई किताब में भी अपन ने लिखा है और हर ज्ञान का ये नक्की है। तो ज्ञान की पर्याय में ऐसी योग्यता है कि वो किस गेय को जाने, और वो अब तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये जो एक बहुत बहुत मार्मिक बात समझ लेना कि हम जिसको चाहेंगे जानेंगे और जिसको नहीं चाहेंगे नहीं जानेंगे, वो जो पर्याय है वो अपने सुनिश्चित गेय को लेकर ही पैदा होती है। जो बच्चा अपने घर में पैदा होता है, मां के गर्भ में आया है, तो अब हम सारी व्यवस्था हम करेंगे उसकी, और हमने की और हम नहीं संभालते तो मर जाता, इस धोखे में मत रहना। वो सारी व्यवस्था खुद अपनी करके आया है, उसका पुण्य उसके साथ आया कि नहीं आया? क्यों जो माँ बाप कहते हैं, उन माँ बाप से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तक वो बच्चा पैदा नहीं हुआ था तो माँ के स्तनों में दूध कहाँ था? तुम लाए हो क्यों? तुम तो एक निमित्त मात्र हो कि उस रास्ते से वो आया है, वो इतनी सी बात है क्यों? समझ में आ रहा? वो अपने दूध की, खाने के पीने की, सब नौकरों की व्यवस्था सब करके लाया है। तुम उसको मुफ्त में ही नहीं, 24 घंटा उसके की सेवा में लगे रहते हो। तुम तो वो हो, मैं कठोर शब्दों में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन क्या कह रहे हैं, मेरे पास कोई दूसरा शब्द नहीं है, कि जिनसे तुम पैदा हुए उन्हें एक गिलास पानी देने में तुम्हें पसीना छूटता है, वही हो ना तुम। तुम्हारा उस बच्चे के साथ क्या रिश्ता है? वही रिश्ता है ना जो तुम्हारे माँ बाप के साथ है। प्रकाश हितेशी एक बात बहुत मार्मिक ढंग से कहते थे, अपने स्मारक में जब आए थे कई दफे उन्होंने कही बात। एक जमाना वो था कि जब एक माँ बाप 10-10 बाल बच्चों को पाल लेते थे, पोस लेते थे, बड़ा कर लेते थे, अयोग्य बना देते थे अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन वे 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। सब अपने यहाँ से धक्का मारने की कोशिश करता है कि उसके यहाँ उसके क्या क्यों नहीं जाता, उसके यहाँ क्यों नहीं जाता, मैं ही तेरा बेटा हूँ, वो तेरा बेटा नहीं है क्यों? पर आज तो हमको एक बच्चा पालना भारी पड़ता है, क्योंकि जितनी हमारी तनख्वाह आती है वो सब उसकी फीस में ही चली जाए, पर जितना हमने जोड़ा है उसे भर्ती करने में ही चला जाए, ऐसी पोजिशन है क्या? नहीं, ऐसा पढ़ा लिखा करके जब उसे ऐसा योग्य बना देते हैं कि वो लाखों रुपए महीने कमाने लगता है तो छोड़ के भाग जाता है अमेरिका। मरो, तुम्हें मरना हो जैसा रहना हो जाओ, क्योंकि वहां बहुत अच्छी सब तरह के मेरे को मिलती है सुविधा, इसके लिए तो तुमने किया है कि नहीं किया है। वो तो पुराना तो रो धोके एक गिलास पानी दे भी देता था, इन लोगों के लिए हम अपना सर्वस्व जीवन लुटा रहे हैं क्यों? उसके लिए लुटा रहे हैं ना उसमें, तो वो बच्चे के तुम नहीं कर रहे हो, नहीं तो रोते रहोगे जिंदगी भर कि हमने ऐसा किया, ये नहीं करता है। वो अपना पुण्य लेके आया था, अपने हिसाब से हुआ, तुम्हारा तुम्हारे साथ है, ख्याल नहीं ना, तुमने अपने पल्ले में थोड़ा सा होगा तुम्हारे में तो तुम्हारा बुढ़ापा शांति से कट जाएगा, नहीं तो रो रो के कट नहीं है क्या? जगत में कुछ होने वाला नहीं। बहुत ही वो ज्ञान का गे भी वो पहले से ही नक्की है कि क्या जानोगे तुम और क्या नहीं जानोगे। फिर अपनी क्रमवत पिता की किताब से और सब बातों से अपने बहुत विस्तार से कहा है कि नहीं कहा, ये नहीं है, ये तो भाग्य से आपकी पर्याय में पहले से ही ये, आज मैं ये बात कह रहा हूं आपके जानने में आएगी, ये नक्की था इसलिए आपके जानने में आई और मेरे को कहने का विकल्प आया। ये बात आप समझना, इसमें कोई बिल्कुल रंत मात्र भी शंका की गुंजाइश नहीं है। तो ये किस ज्ञान का कौन गे बनेगा, वो उसमें स्वर पर कुछ भी हो सकता है। यदि पर को आत्मा नहीं जानता होता, अकेले अपने को ही जानता होता, तो कौन गे बनेगा ये समस्या ही कहां खड़ी होती थी। बस उसका आत्मा का अपने आत्मा गे बनेगा और कोई बनेगा ही नहीं। क्यों ये कौन गे बने, ये प्रश्न ही कहां से खड़ा होगा, क्योंकि स्वा तो एक ही है और पर तो अनेक है। अकेले स्वा को ही जानेगा तो एक नक्की है बस वही, क्यों है? पर को है ही नहीं। वो हम में भी बहुत तकनीकें लगाते हैं टेक्निक। एक आदमी ने एक आदमी को 10,000 रुपए दिए थे और लिखा पड़ी पक्की की थी स्टाम्प लगा करके। गवर्नमेंट का कानून है कि 3 साल के भीतर यदि वो कर्ज नहीं देता है आपके पैसे वापस, तो आप 3 साल के भीतर उस पर अदालत में दावा कर सकते हो। यदि 3 साल और 1 दिन हो गए तो तुम्हारा दावा खत्म, अब बस अब तुम्हें नहीं मिलेगा। तो अब ये कानूनी एक प्रिंट हो सकता है, लेकिन वो 10,000 रुपए दिए थे, यदि ईमानदार से देने वाला और लेने वाला है तो म्याद के भीतर भी उसका वैसा ही देना है और म्याद के बाहर भी। ईमानदारी की बात तो ये है ना, मेरा मतलब समझ गए ना क्या है। यदि उसके पास नहीं है भाग्य से, सुनो वो आज नहीं दे सकता है, तो इतना तो कर सकता है कि द्वारा लिखा पढ़ी कर दे तो फिर तुम्हारी 3 साल की और म्याद हो जाए। मैं क्यों कर रहा हूं, मैं 1 दिन बाद तो छूट ही जाऊंगा, क्यों मैं क्यों झंझट में पढ़ू, बेईमानी है कि नहीं। तो ऐसी ज्ञान की हम टेक्निक लगाते हैं, तो आत्मा ज्ञान की पर्याय में परपदा झलकते हैं। आत्मा तो ज्ञान की पर्याय को जानता है, वो पर को जानता ही नहीं है, समझे ना। ये सब टेक्निक की बातें हैं। मैं पूछता हूं कि वो इस विधि से जानता है, तो इससे नहीं जानना अर्थ कहां से निकलता है। ये जानने का भेद है कि नहीं जानने का। मैं बहुत मार्मिक बात कहता हूं कि मुझे चश्मा के बिना दिखाई नहीं देता, तो मैं अंधा हूं क्या आंख वाला। मैं पूछता हूं आपसे क्योंकि मुझे नहीं दिखाई देता, बिल्कुल लाओ चश्मा तब दिखाई देगा। अंधा किसे बोलते हैं जिसे दिखाई ना दे। अब मुझे चश्मे से दिखाई देता है तो उसमें मेरे को दिखाई नहीं देता है, ये अर्थ कहां से निकालते हो। चश्मे से दिखाई देने का अर्थ नहीं दिखाई देना कहां अर्थ होता है, उसका नाम तो दिखाई देना है ना। चश्मे से दिखाई देना इसका नाम भी दिखाई देना है ना। तो ज्ञान दर्पण में देखना ये भी देखना है कि नहीं। डॉक्टर के पास आप गए और उसने बस आपको देखा, क्या तकलीफ है, क्या साहब सीने में दर्द होता है, ठीक है फटाफट फटाफट लिख दी, एक्सरे निकलवाओ, ये करवाओ, इसकी जांच करवाओ, इसकी करवाओ, ये सब भेज दिया आपको। अब बातें नहीं करी, इसने पूछा क्या तकलीफ है, तो बाहर भगा दिया कि 3 दिन बाद आना। अब 3 दिन बाद गए तो बस डॉक्टर ने फिर बातें नहीं करी, अगला दवाई लिख दी कि ये खाओगे ऑपरेशन होगा। अब क्या करूं मैं, ऐसे में कैसे ऑपरेशन कराऊं, डॉक्टर ने देखा ही नहीं, बस विद्यार्थ होंगे इतने पैसा लगवा दिए 10,000 मुफ्त के। अरे वो एक्सरे देखा उसने, बस तुझे देखा कि नहीं देखा, मैं बोला बोलो मरीज को डॉक्टर ने देखा कि नहीं देखा, ऐसे क्या मानते हो आप। क्योंकि अंदर की जो हड्डी है उसमें क्या डिफेक्ट है, कि तुम्हें देखने से नहीं आएगा समझ में, कोई एक्सरे देखने से आएगा। तुम्हारे खून में क्या कमी है, कोलेस्ट्रॉल में क्या कमी है, एक खून की रिपोर्ट देखने से आएगा समझ में। तो बोलो उसको देखना, देखना माने कि नहीं माने मुझे बताओ। इस जगत में ऐसा जो कहता है कि डॉक्टर ने देखा ही नहीं मुझे और कह दिया तो मैं आपस तुम्हारा ऑपरेशन होगा, मेरा पेट चीर दिया, कि वो ये मानता है कि बहुत अच्छी तरीके से देखा एक एक घंटे तक, फिर डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस बुलाई, फिर तय किया कैसे इसका क्या करना चाहिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसमें उसने 8 दिन लगा दिए क्यों, फिर बाद में सबने तय किया कि हाँ इसका ऑपरेशन करना चाहिए, तब किया गया, फिर क्या करना था। तो ये लोग जो कहते हैं कि वो ज्ञान में झलका इसलिए नहीं देखा, वे उन जैसे हैं जो वो बिना पढ़ी लिखी माँ बहन जो कहती है ना कि मुझे डॉक्टर ने देखा ही नहीं, शिकायत बनी रहती है उसकी और जो वजह से उसने मेरा पेट चीर के रख दिया है कि नहीं, मुझे बोलिए, वो उस जैसी है। और जो वो देखा कहता है वो ये है कि भाई उसकी विधि ये है, प्रक्रिया ये है देखने की, बड़े डॉक्टर नहीं देखते हैं कि छोटे के पास जाओ तो कम से कम ब्लड प्रेशर तो लेता है, क्यों जबान खुलवा के तो देखता है, पल्स तो देखता है, यहाँ पर लगा आला लगा के तो देखता है, लेकिन इसने तो वो भी नहीं देखा। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास आजकल मालूम क्या होता है कि उनके 5-6 कमरे होते हैं, उन कमरे में आगे मरीज बैठे रहते हैं और उनके जो असिस्टेंट डॉक्टर हैं वो पहले आते हैं, ब्लड प्रेशर लेते हैं, पल्स देखते हैं, बुखार देखते हैं, आप समझे ना, उनकी हाइट नापते हैं, वजन देखते हैं और सब उस पर लिखते हैं, क्यों पूरा तैयार करके करते हैं कि नहीं, बिल्कुल एकदम करके, फिर वो डॉक्टर आता है तो वो जो रिपोर्ट बना करके वो तैयार करके रखता है ना, वो उसे देखता है और पर्चा लिख देता है, अब के दिन हमें देखा ही नहीं, मैंने ब्लड प्रेशर नापा, अरे भाई एक नर्स नाप रही थी, बिना पढ़ी लिखी नर्स ने भी कहना था वो तो मशीन नापती है क्यों, तेरा ECG भी डॉक्टर करेगा क्यों, फिर वो देखना है कि नहीं देखना है, तो ऐसी प्रक्रिया की बात करना कि वो ऐसे नहीं ऐसा देखता है, इसमें कुछ दम नहीं है। अरे सबसे बड़ा तर्क एक और बहुत मजबूत है कि पर को जैसे वो हमारी पर्याय में झलकता है और वो हमें दिखता है ना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी वैसा ही झलकता है और वैसा ही दिखता है, डायरेक्ट वो भी नहीं दिखता, केवल ही भगवान को भी हमें तुम्हें तो जाने दो, उनकी भी ज्ञान पर्याय में झलकता है, समझ में आया ना, दर्पणाएं थे आता ना, यदि विद्या दर्पणाएं थे, तो यदि तुम वो डायरेक्ट नहीं जानता है, ज्ञान पर्याय में झलकता है और उसे जानता है, इसको नहीं जानना कहोगे तो फिर आत्मज्ञान कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा को जानना भी कोई नहीं जानना कहना पड़ेगा, पर को जानता नहीं जानता और अपने को जानता ये कैसे कह सकते, तो उसी विधि से आत्मा को जानना वो निश्चय हो गया और उसी विधि से पर को जानना वो व्यवहार हो गया, ये कहां का न्याय है, तो क्या निश्चय भगवान व्यवहार है, लेकिन वो उस विधि से जानने के कारण वो व्यवहार नहीं है, तन्मय होके नहीं जानता इसलिए व्यवहार है, पर ये इसे तन्मय होके जानता है इसलिए इसका नाम निश्चय है, और तन्मय होने का अर्थ क्या है, उपयोग की एकाग्रता नहीं, ये मैं हूं ऐसी श्रद्धा पूर्वक जानना उसका नाम है तन्मय होके जानना, और ये मैं नहीं हूं ऐसी श्रद्धा पूर्वक जानना उसका नाम है अतन्मय होके जानना, पर इतनी सी बात है, सम्यक दृष्टि पर पदार्थ को ये मैं नहीं हूं ऐसा जानता है, इतनी सी बात है, इसको इस अपेक्षा व्यवहार है, वो तो नहीं जानता इसलिए व्यवहार है, वो तो पर्याय में झलकता इसलिए व्यवहार है, ऐसा है ही नहीं, और ये जो वाक्य मैं आपको बोल रहा हूं ये सब शास्त्र के हैं, जिनवाणी के हैं। तो इस तरह 49वीं गाथा में जो आत्मा का स्वरूप बताया है, अब उसी बात को जो गाथा में कहा है, आचार्य का मन भरा नहीं है तो फिर खोल खोल के कोई बात को विस्तार से कह रहे हैं, उसकी उत्थान का रूप जो कलश है उसे अपन पढ़ते हैं। चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व स्वारो जीवो यवानयम् अतोतिरिक्ता सर्वे पी भावा पौद्गल का अमी। चित्त शक्ति सर्वस्व जिन केवल बे है जीव, उन्हें छोड़कर और सब उद्गल मई अजीव। इस छंद में भी बहुत सी मार्मिक बातें हैं जो हमारे विवाद का विषय बनती है। कभी चित्त शक्ति सर्वस्व जिन, जिनेन्द्र भगवान का सर्वस्व क्या है? चित्त शक्ति चेतना गुण मसद्यम, कोई कहा था ना चेतना गुण, चित्त शक्ति माने चेतना गुण, वो ही आत्मा का सर्वस्व है। जो कुछ है वो ये है कि वो अरस रूप वो नहीं है कि वो तो रस नहीं है, इसका नाम अरस है। क्या क्यों? मैं पंडित हुकुमचंद हूं, रमेश नहीं, दिलीप नहीं, क्या ना लड्डूला, ए नहीं, समझ गया ना, ए नहीं, तो ए नहीं इसमें मैं क्या? ये तो अरस रूप तो आठ नौ कहे हैं, एक लाख कहो, अनंत कहो, क्योंकि मेरे अलावा पर पदार्थ तो अनंत हैं, तो अनंत बार कह सकते हो ए मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ख्याल में है ना? ये मैं नहीं, ऐसा मेरे में एक नास्तित्व धर्म है, वो मेरे में है, वो अस्थि रूप है। तो सर्वस्व क्या रहा मेरा? चित्त शक्ति। चित्त शक्ति सर्वस्व जिने, जिन माने जिनके, केवल बे हैं जीव, जिन माने जिनेन्द्र भगवान नहीं, जिनकी चित्त चैतन्य शक्ति ही सर्वस्व है, वे केवल बे जीव हैं, वो इन्हें छोड़कर और सब उद्गल मई अजीब। अब इसमें खतरनाक बात यह है कि इन्हें छोड़कर, मतलब चित्त शक्ति को छोड़कर, तो इन्हें क्यों कहा? इसे कहते तो चित्त शक्ति में अनंत गुण समाहित है ना, ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, और सब वो पुद्गलमय हैं और अजीब हैं। क्या मतलब? अब इसमें अपने आत्मा को छोड़कर पर जीव भी आ गए ना, अब उन्हें पुद्गलमय कह रहे और अजीब कह रहे, अमेरिका में एक भाई हैं, तो बस वो इसलिए अत्यंत नाराज हैं अपने मिशन से कि एक दफे वो उज्ज्वला बहन वगैरह गई थी ना, दिनेश भाई और उज्ज्वला बहन, तो उनने ये कह दिया कि दूसरे का अजीब भी अजीब है अपनी अपेक्षा पर, खत्म, उन्हें अजीब कैसे कह सकते हो? इसमें अपेक्षा है, शास्त्र में लिखी बताओ, ले लिखी बताए तो मानेंगे, स्पष्ट क्या लिखा क्या आप समझ ना, तो खत्म इसलिए। ऐसे ही अजमेर में वो कैलाश जी थे ना बुलंद शहर वाले, तो उनने आकर के यहाँ अजीब कह दिया था, तो यहाँ पर भी वही बहुत बड़ा दंगा हो गया था। अब ये तो ऐसी बात है कि हम बता रहे आगम का प्रमाण, आप मानो तो मानो, लिखा ना उन्हें छोड़कर और सब, तो आकाश पुद्गलमय ही है, अजीब तो आकाश को कह सकते आप, लेकिन उनको पुद्गलमय कही, तो क्या अर्थ है इसका? इसका ये अर्थ है कि हमें दुनिया को दो भागों में बांटना है, एक भाग में अपने आत्मा को रखा है और दूसरे भाग में सबको रखना है, और सबको हमें एक नाम से कहना हो तो क्या करें? पांच द्रव्यों को हमें एक नाम से कहना हो तो क्या करें? कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल कहने से तो काम ये होगा नहीं, तो हमें अजीब कहना पड़ता है। अब आगम में भेद विज्ञान की दृष्टि से कहीं कहीं उन्हें अजीब नहीं कह के पुद्गल भी कह दिया, रूपी भी कह दिया, अचेतन भी कह दिया। अब वो अपेक्षा को अपन स्वीकार नहीं करेंगे तो वहां पर अपन गड़बड़ा जाएंगे। तो इसमें ऐसा खुद ही लिखा है कि सारे झगड़े नयों का स्वरूप सही नहीं समझ पाने के कारण ही है। टोडरमल जी ने मुख्य मार्ग प्रकाशक के सातवें अध्याय में जब निश्चयाभासी व्यवहाराभासी उभयाभासी का स्वरूप बताया वो एक एक का विस्तार से बहुत बहुत वर्णन किया, ठीक है, लेकिन वो तीनों का एक कॉमन बात कही उनने कि ये तीनों आदमी हैं जो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी और उभयाभासी, इनकी प्रवृत्तियां तो अलग अलग हैं, वृत्ति भी अलग अलग है, लेकिन गलती एक ही है सबने। वही गलती निश्चयाभासी की, वही व्यवहाराभासी की। कैसे है? निश्चयाभासी तो अपने को केवल ज्ञानी मानता है और रागादिक रहित मानता है, और व्यवहाराभासी तो अपने को रागादिक सहित मानता है। क्यों? केवल ज्ञान से रहित मानता है। दोनों की गलती अलग अलग हो गई ना। तो पंडित जी ने लिखा शुरू में एक ही गलती है। क्या बताई, बोलो, बता सकता है कोई? पंडित जी के शब्दों में, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा, क्योंकि वो निश्चय व्यवहार नय का स्वरूप नहीं जाए। एक ही गलती है, एक गलती निकल जाए तो न निश्चयाभासी निश्चयाभासी रहेगा, न व्यवहाराभासी व्यवहाराभासी रहेगा, न उभयाभासी उभयाभासी रहेगा। शुरू में लिख दिया, जिनागम में समस्त कथन निश्चय व्यवहार से किया गया है, और ये निश्चय व्यवहार को नहीं जानता इसलिए ये सारी गलती है, बस एक गलती है। और फिर उन्हें गलतियों के ढेर लगाए हैं, और जितने उन्हें लगाए अपन कोशिश करें तो उनसे तिगुनी और अपन निकाल सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम सिर्फ एक है। आपका हाथ में तकलीफ थी, हाथ का ऑपरेशन हो गया, बढ़िया, बाल बदल गया, सब हो गया एकदम, अब हो गया एकदम, अब एकदम आप अप टू डेट हो। अब डॉक्टर के पास गए कि साहब कमर में दर्द रहता है, यहाँ दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है, ये होता है, वो होता है, बहुत तकलीफ है, अब तो कहते सब ठीक हो जाए कि भैया कुछ नहीं है, अब तुम्हें कुछ नहीं है, जांच लिया, हम जांच करवा ली, कुछ नहीं है। कि कुछ कैसे नहीं है, हम तो भोग रहे हैं। कि तुम्हें कमजोरी है, क्या है? वीकनेस है। आखिर तुम अभी ऑपरेशन से उठे हो, इतनी इतनी तकलीफ पाई है, अब वीकनेस है, क्यों? खाओ पियो चलो करो, नहीं नहीं कोई दवाई लिख दो, दवाई भी लिख देंगे, क्यों? लेकिन चलो फिरो, खाओ, निश्चिंत होके रहो, फकर नहीं करो, अब कोई तकलीफ तुमको होने वाली, मरने वाले नहीं हो, हमारी गारंटी है। नहीं साहब, इतनी तकलीफ है और सुनते ही नहीं। अरे कह दी ना हमने, बीमारी एक है अकेली कमजोरी, तो लिख दो ना कोई, वो क्या बोलते उसको, विटामिन के होते हैं बोतल आती है, क्या सोने के बोतलों में ताकत नहीं भरी है, बेबी लिख देंगे क्या इंजेक्शन लगा दे ताकत का, लगी है ताकत भरी है, इंजेक्शन लगा के पेट में ताकत आ जाए। वो हमारा काम है, हम करेंगे, लेकिन तुम चलोगे नहीं, फिरोगे नहीं, उठोगे नहीं, घूमोगे नहीं, फिरोगे नहीं, क्यों? खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, है? तो कमजोरी किसी कीमत पर जाएगी नहीं। एक बीमारी है, क्या नाम? कमजोरी। एक बीमारी है कि निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं जानते हैं। उन्हें छोड़कर और सब पुद्गल मई अजीब, चाहे उसे पुद्गल मय कहो, अजीब कहो, और कुछ पर कहो, जो कुछ भी नाम कहो, बेकार, हम एक कहेंगे, रात कहेंगे तो भी तुम सब लगा लेना, पुद्गल कहेंगे तो भी सब लगा लेना, अजीब कहेंगे तो भी सब लगा लेना, क्रोध कहे तो भी सब लगा लेना। वो कहा है, देखो, एको करता चिदेह में कर्म को पादयोमी। देखो कोपादे कह के काम निपटा दिया ना, कहीं ज्ञान वर्णादि कह के काम निपटा देते हैं, कहीं दृढ़ कर्म कह के काम नाम काम निपटा देते हैं, कभी शरीर कह के नाम निपटा देते हैं। कहा कह दिया ना, देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है यही को विस्तार। अब ये उन्होंने संक्षेप में ये कह दिया, ये कहते अगली चार गाथाओं की उत्थानिका, चार नहीं कितनी छह है, कि उत्थानिका का एक कलश है। अब कहने लगा हमको तो नहीं आया समझ में, तो सुन लो अभी विस्तार है जी। बोलो जीवस नत्थी बन्नो नवी गंधो नवी रसो नवी फासो नवी रूपम न शरीरम। जीवस नत्थी रागो नवी दोषो नैव विद्यतो मोहो। जीवस्य नत्थि भग्गो न भग्ना नैव फड्डया केयी। नोधि बंध ठाणा जीवस्य न उसी को उन्हें कह दिया सब पुद्गल के परिणाम है ना। अब उन्होंने 29 प्रकार के भाव गिना दिए यहाँ, वर्ण से लेकर गुण स्थान पर्यंत। ऐसा अपना कलश भी आएगा आगे, जब वर्ण से लेकर गुण स्थान पर्यंत जितने ये भाव हैं, देखो इसी के बाद है ये कलश 37वां। वर्णाद्या राग मोहादय भिन्ना भावा सर्व एवा सुपुंसा आ गया ना। इसी में एक वर्णादि और एक रागादि दो ग्रुप है ना, वर्णाद्या राग मोहादय है ना। और ऐसे एक जगह आता है कि भाई ये अभी ये उन्होंने एक 29 बोल गिना दिए, चाहे अजीब कहो चाहे पुग्गल कहो, लेकिन इनमें जो 29 लेना। अब वो तो ये कहेंगे एक का नाम ले हम तो 29 समझ लेना, हम वर्ण से भिन्न कहेंगे तो 29, रस से भिन्न कहेंगे तो 29, आप समझिए ना। ये तो अन्याय है, अन्याय नहीं है भैया। जब यहाँ पर कोई आदमी रास्ते में आता है हॉल में, किसी को भी आना मना है, ऐसा कर चपरासी को खड़ा कर देते, तो वो जब आता है कि नहीं आप नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि कोई नहीं आ सकता। जब वो आप नहीं आ सकते इतना ही बोलता है, वो कोई नहीं आ सकता है वो, तो जब आप पूछते हो तब बोलता है। क्या आपका अर्थ तो वो सामान्य कहता है, क्रोध जीव नहीं है। क्यों नहीं है? कि माया लोग और वर्ण आदि कोई जीव नहीं है, इसलिए वो भी जीव नहीं है। समझ गए ना आपने? मैंने अब बार बार हम 29 नहीं गिनाएंगे। अध्यात्म में ऐसा है कि एक का नाम लें, एक को रोकें तो बाकी लंबे लोग इतने चले आ रहे हैं, उन्हें सबको समझ लेना चाहिए कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। हर एक को आकर के पूछने की जरूरत नहीं है। एक को उसने कह दिया कि पास हो तो बताओ, तो बाकी के जो लेन लगा के खड़े हैं आने अंदर, उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे पास पास नहीं है, हम चले जाए सकता। तो आत्मा होने का वर्णादि से लेके गुणस्थान पर्यंत ये सारे भाव हैं, इसमें गिनाए हैं। वो जीव नहीं है ये अर्थ समझना। अरस मधु मगंधम, देखो पहले भी वही बात कही थी और वो मूल गाथा बीच में आ गई और फिर भी वही के साथ। अब ये रिपीटेशन क्यों करते हो? हमें नई बात बताओ ना। अरे हमारे पास और कोई नई बात नहीं, एक ही है, इससे ही तुम्हारा काम हो जाएगा है? अब तुम और सुनाओ और सुनाओ, तो हम सुनाते रहेंगे, सुनाते नहीं है। फिर और सुनवाओगे तो हम कहें वर्ण क्यों नहीं है, फिर वो तर्क देंगे, युक्तियां देंगे, रस क्यों नहीं है, वो तर्क देंगे, एक पिया देंगे, आचार्य घबराते नहीं है क्योंकि ये पुद्गल देव का परिणाम है और आत्मा उनसे पुद्गल देव से भिन्न है इसलिए रस नहीं है, ये क्योंकि ये पुद्गल देव का परिणाम है, आत्मा इससे भिन्न पुद्गल से भिन्न है इसलिए ये नहीं। वे 29 बार कह देंगे आचार्य, बोलो कैसा है वो, फिर बाजी सुनी थी कि नहीं सुनी थी, कि तेरी फिर बाजी कब खत्म होगी, और कुछ समझाओ, और क्या समझाए, बस ये आत्मा को छोड़कर और कुछ तेरा नहीं है, बस इतना ही। तू शक्ति सर्वस्व जिन, ये है केवल वे हैं जीव और उन्हें छोड़कर और सब पुद्गल मई अजीत, ऐसा दो आए कि लिखा लेना ना सोर आपके सामने और पढ़ना उठा सोर उसके डोर के। तुत शक्ति सर्वस्व जिन, वे हैं पुद्गल जीव उन्हें छोड़कर और सब, नवो कारवन लिखाओ तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखाओ तो भी चलेगा, ये लिखा लेना कि उससे महान है। देखो मैं झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं इससे कहना चाहता हूँ उसमें क्या, अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार, नमस्कार हो, यही तो है ना, और इसमें क्या है? बोलो, ये मंत्र बड़ा है या वो मंत्र बड़ा है? उस मंत्र से पुण्य का बंध होगा और इस मंत्र से भेद विज्ञान हो गया, आत्मा का अनुभव की लेन पे जा सकते हो, बोलो है? लेकिन नमोकार मंत्र के विरुद्ध बोलना भैया ऐसे बोल मत देना, कहीं ना पिटे पिटे बिना नहीं रहोगे तो मैं भी बदनाम होऊंगा और तुम भी बदनाम होंगे। तुम अंदर से सोचो गंभीरता से, यही तो है, पिताजी तुम्हें नमस्ते, माताजी तुम्हें नमस्ते, बड़े भाई साहब तुम्हें नमस्ते, जीजाजी तुम्हें नमस्ते, मामा जी तुम्हें नमस्ते, यही तो है, यही नहीं क्यों कि पिताजी की आज्ञा मानना, कि सुबह सुबह सबको नमस्ते, सबके पैर छूना, बस है ना, हो जाएगा काम। इसलिए वो भी उसको छोड़ने की बात नहीं है, अपने पंच परमेश जी की, अपने गुरुओं की विनय मर्यादा तो हरेक को रखना ही चाहिए, लेकिन उसे आगे भी थोड़ा बढ़ना चाहिए,